अभिमन्यु और इशिका बाहर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी दिग्विजय वहां पर आए थे। सुबह विक्रम के कॉल के बाद वो पहले ही परेशान हो चुके थे कि तभी सिद्धांत ने उन्हें कॉल करके आग में घी डालने का काम कर दिया था। वो अभिमान की शिकायत लगा रहा था। दिग्विजय को परेशान चेहरे के साथ अपने केबिन में इस तरह देखकर अभिमन्यु और ऋषिका उन्हें अंदर लेकर आए। अभिमन्यु ने उन्हें आराम से काउच पर बिठाया और फिर उनके पास में आकर बैठ गया था। ऋषिका वहीं उनके पास खड़ी हुई थी। अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में पूछा, छोटे दादू, मैंने आपको इस तरह काफी कम मौकों पर परेशान देखा है, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताइए। आप जानते हैं कि मैं आपको और दादी को इस तरह परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। अभिमन्यु को इस तरह खुद की चिंता करते देखकर दिग्विजय के चेहरे पर एक मायूस सी मुस्कुराहट आ गई थी। राजवंश फैमिली में जैसे वसुधा के परिवार में अनबन और खींचातानी बनी रहती थी, वैसा ही कुछ हाल दिग्विजय के परिवार का था। दिग्विजय ने गहरी सांस ली और कहा, सोचा था वो तुम्हारी तरह होगा। मैंने उसकी बात मानकर सबसे लड़ झगड़ कर उसे अलग से शेयर्स दिए थे ताकि वो खुद को साबित कर सके। अभिमन्यु समझ गया था कि दिग्विजय किसकी बात कर रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तो उभर आई थी। वो बोला, लेकिन आप गलत नहीं थे, उसने खुद को साबित किया है। मुंबई में AR एम्पायर्स का काफ़ी अच्छा नाम बन रहा है और वो एशिया की टॉप कंपनी में से एक है। लेकिन वो राजवंश फैमिली को बर्बाद कर रहा है, उसका क्या करूं? वो जैसा भी है वो मेरा परिवार है और मैं उन्हें इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। अभिमान तो मेरा कॉल तक रिसीव नहीं करता है, उसे रोकना ज़रूरी होगा, वरना वो अपने गुस्से में सच में सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेगा। दिग्विजय ने अपनी परेशानी का कारण अभिमन्यु को बता दिया था। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा। इशिका ने दिग्विजय से कहा, मुझे अभिमान के बारे में अभिमन्यु ने बताया था छोटे दादू, और सच कहूँ तो अगर किसी को ज़िंदगी में इतने जख्म मिले होते हैं तो फिर उसे सही गलत से फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोग खुद के साथ अन्याय करने वालों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने किया, तो कुछ अभिमान की तरह बदला लेने की राह पर निकल पड़ते हैं। जो भी हो, उसे रोकना होगा, दिग्विजय बोले। फिर उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखा और उम्मीद भरी निगाहों से कहा, क्या तुम उसे समझाओगे? ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ और आप परेशान मत होइए। बाकी सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे समझाने से समझ जाएगा। वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो मेरी कैसे मानेगा? अभिमन्यु बोला, एक आखिरी कोशिश तो कर ही सकते हो। अगर पूरे राजवंश फैमिली में वो अपनी माँ को छोड़कर किसी को आइडल मानता है तो वो सिर्फ तुम हो अभिमन्यु, दिग्विजय बोले। अभिमन्यु ने उनकी बात पर हामी भरी तो दिग्विजय के चेहरे पर भी संतुष्टि भरी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि अभिमन्यु अभिमान को गलत रास्ते पर जाने से रोक ही लेगा। अभिमन्यु को थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय वहां से चले गए थे तो वहीं ऋषिका और अभिमन्यु अब वहीं पर साथ में बैठे हुए थे। उनके बाहर जाने का प्लान खराब हो गया था तो अभिमन्यु ने वहीं पर खाना मंगा लिया था। दिग्विजय के जाने के बाद अभिमन्यु और ऋषिका अभिमान के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम उसे समझाने के लिए सच में जाने वाले हो? इशिका ने पूछा। हाँ, सोच रहा हूँ कि एक बार एक मिनी हनीमून के लिए मुंबई चलते हैं। वैसे भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पर अटके हुए हैं, क्यों ना इसी बहाने राजवंश फैमिली में जाकर रहा जाए। वैसे भी मैं इन फैमिली ड्रामा को बहुत मिस कर रहा हूँ, अभिमन्यु ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। इशिका ने बिना किसी सवाल के उसकी बात पर हामी भर दी थी। उसे भी दूसरी राजवंश फैमिली से मिलने की थोड़ी उत्सुकता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूरे दिन रचित से नाराज रहने के बाद अभिमान ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। रचित भी यही चाहता था कि वो किसी गुड न्यूज़ के साथ ही अभिमान के सामने जाए, वरना वो गुस्से में फिर से उस पर फट पड़ेगा। हमेशा की तरह देर रात को काम निपटाने के बाद अभिमान राघव के साथ घर जा रहा था। तभी रचित वहां पर आया और डार्क वेब के नंबर वन हैकर ऐश के उनके साथ काम करने की बात कही। ये सुनते ही अभिमान का मूड सच में सही हो गया था। अभिमान के खुश होने पर रचित ने अपनी आदत के मुताबिक खुश होकर उसकी चेस्ट पर हल्का सा पंच करने लगा, जबकि अभिमान पहले ही पीछे हट गया था और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। ये गंदी आदत कहाँ से पाली है तुमने? जब देखो सामने वाले को मारते पीटते रहते हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे टच करे, तो तुम मुझसे कुछ मीटर दूर ही रहा करो, अभिमान उसे घूरते हुए बोला। अच्छा ठीक है ना, मेरी वजह से तू नाराज है और मेरी गलती की वजह से तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ, देखना मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। जैसे मैंने ऐश को ढूंढ निकाला और उसे अपने साथ काम करने के लिए मना लिया, इसी तरह देखना एक दिन तुम्हारा तलाक भी करवा दूंगा, रचित ने उसे मनाने के लिए कहा। रचित को लगा कि उसकी बात के बाद अभिमान मान जाएगा, लेकिन वो उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे आपका ये एहसान कतई नहीं चाहिए। कृपा करके मेरी ज़िंदगी से दूर रहो, और ख़ास करके शादी और तलाक के मामले में। अभिमान के इस तरह तंज भरे लहजे में बात करने पर रचित का मुंह बन गया था, तो वहीं राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। उन दोनों की नोकझोंक ऐसे ही चलती रहती थी और राघव शांति से उन्हें देखता रहता था। अभिमान गाड़ी की तरफ जाने लगा तो वहीं उसे मुस्कुराता देखकर रचित ने राघव के चेस्ट पर हल्का सा पंच करके कहा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने को हम तीनों दोस्त हैं, लेकिन तुम हमेशा उसका फेवर करते रहते हो। बिल्कुल,
क्योंकि वो हमारा बॉस है। तुम्हें क्या लगता है उन्हें नाराज करने के बाद तुमसे नौकरी की उम्मीद करूंगा, जिसे गड़बड़ करने के अलावा और कुछ नहीं आता? राघव ने सिर हिलाकर कहा। रचित ने मुंह बनाया। इससे पहले कि वो राघव की बात का जवाब दे पाता, अभिमान गाड़ी के पास पहुंच गया था। वो तेज आवाज में बोला, कम ऑन राघव, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ, गलती से भी इसकी बातों में मत आना, वरना जैसे मेरी जिंदगी खराब की है वैसे तुम्हारी भी कर देगा। बेवकूफ कहीं का, शैतान ऐसे दोस्त दुश्मनों को भी ना दे। एक्सक्यूज मी, वो भगवान होते हैं, शैतान नहीं, रचित ने चिढ़कर तेज आवाज में कहा। हाँ, होते तो भगवान हैं, लेकिन तुम जैसा डिफॉल्ट पीस बनाना भगवान के भी बस की बात नहीं। जरूर किसी शैतान ने ही तुम्हें बनाया होगा, अभिमान उसे चिढ़ाते हुए बोला। रचित को इतना भला बुरा सुनने के बाद भी अभिमान गाड़ी में बैठा तो उसने रचित को अपने साथ अंदर आने का इशारा कर दिया था। रचित मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर आ रहा था। सबसे पहले उन्होंने रचित को ड्रॉप किया, तो फिर बाद में राघव को। आखिर में अभिमान घर पहुंचा था। अंदर जाते हुए उसने मन ही मन कहा, चलो इतनी मुसीबत के बाद एक तो अच्छी खबर सुनने को मिली कि ऐश हमारे लिए काम करेगा। सिर्फ वही है जो मेरी मदद कर सकता है इस राजवंश फैमिली को बर्बाद करने में। आज अभिमान का मूड घर लौटते वक्त अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ आशिका इंडिया जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची, कुछ मेहमान उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। स्काई अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट पर आशिका के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आशिका ने उसे देखा, उसके कदम वहीं पर रुक गए थे, तो वहीं स्काई मुस्कुराते हुए उसके पास आया। वो उसके गाल पर हाथ रखकर उसे अंगूठे से सहलाते हुए बोला, कल तुम्हारे तेवर देखकर लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। तुम्हारी माँ एक घटिया औरत है, अपने फायदे के लिए उसने तुम्हें मना ही लिया। मुझे देर हो रही है, आशिका ने जवाब में कहा। वो स्काई से उलझना नहीं चाहती थी, ऑलरेडी उसके गुंडों के चक्कर में उसे एयरपोर्ट तक पहुंचने में लेट हो रही थी। लेकिन मैंने पता किया है कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट एक घंटे डिले है, और वो एक घंटा तुम मेरे साथ बिताने वाली हो, स्काई बोला।
वो आशिका की आंखों में देखते हुए उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कोई कुछ भी कह दे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि आशिका इतनी जल्दी तलाक लेने के लिए अपने पति के पास चली जाएगी। वो तभी उसकी हर एक हरकत पर नज़र रख रहा था, ये कन्विंस करने के लिए कि आशिका एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया ही जा रही थी। वो अपना इम्पॉर्टेंट काम छोड़कर वहां पहुंच गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट भले ही एक घंटे देरी से हो, लेकिन इंडिया की फ़्लाइट टाइम से थी, जो अगले 15 मिनट में टेक ऑफ करने वाली थी। आशिका के पास टाइम नहीं था। अगर वो थोड़ी सी भी लेट करती तो उसके नाम की अनाउंसमेंट हो जाती और वो पकड़ी जाती। आशिका ने सिर हिलाया और उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है फिर, पास के रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे एयरपोर्ट का खाना पसंद नहीं है। स्काई ने कुछ देर के लिए उसे घूर कर देखा और फिर आशिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाने लगा। उसके बार बार चिपकने पर आशिका को बहुत अजीब लग रहा था, पर फिलहाल के लिए खुद को उस माफिया से बचाने के लिए उसे ये सब दिखावा करना ही पड़ रहा था। एयरपोर्ट से करीब 5-7 मिनट की दूरी पर एक रेस्टोरेंट में आने पर आशिका ने राहत की सांस ली। अगर अब उसके फ्लाइट के अंदर न बैठने पर अनाउंसमेंट भी होता तो वो पकड़ी नहीं जाती। आशिका ने मेन्यू उठाया और ऑर्डर देखने लगी। वहीं स्काई उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक वो बोला, वैसे इस तरह छुपकर आने की जरूरत नहीं थी, कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? आशिका ने नज़र उठाकर स्काई की आंखों में देखा और कहा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मुझसे शादी ही क्यों करना चाहते हैं? आप जिस औरत को घटिया कह रहे हैं वो मेरी माँ है, और मैं भी उसी की तरह हूँ। आपको अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए, मिस्टर स्काई। अचानक स्काई जोर से हंसने लगा। आशिका हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। तुम अपनी लालची माँ की तरह नहीं हो, अगर होती तो उसी के साथ रहती, जैसे वो दूसरी वाली चिपकी रहती है। बाकी मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा होगा। डरो मत, जब तक मुझे धोखा नहीं दोगी कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, उल्टा तुम्हें चोट पहुँचाने वाले की जान ले लूँगा। अब सीधे सीधे बताओ, छुप कर क्यों आई थी? कहीं और जाने का इरादा है तुम्हारा? स्काई ने सख्त आवाज़ में कहा। आशिका ने गहरी सांस ली और जवाब में बोली, नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही जा रही थी। छुपकर इसलिए बाहर निकली थी क्योंकि आपके गुंडे मेरे पीछे आने लगते, मुझसे 100 सवाल पूछते, मुझे किसी तरह का मैस नहीं चाहिए था। बाकी छुपकर जाना होता तो मैं मिसेस हिल को कभी नहीं बताती कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। आशिका को समझते देर नहीं लगी कि उसके यहाँ होने की बात तृप्ति ने ही स्काई को बताई होगी। स्काई ने आगे कुछ नहीं पूछा। उनका खाना आ गया था। जहां स्काई खाना खाने में बिजी था, तो वहीं आशिका एक हाथ से खाना खाते हुए टेबल के नीचे से दूसरे हाथ से अपने फोन में लगी हुई थी। स्काई को यकीन दिलाने के लिए उसका ऑस्ट्रेलिया के फ्लाइट में बैठना जरूरी था। वहीं एयरपोर्ट पर एक लड़की वहां के स्टाफ पर चिल्ला रही थी। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी टिकट कन्फर्म हुई थी, अचानक से आप कह रही हैं कि ये टिकट किसी आशिका सिंघानिया के नाम से बुक है? मैं आपको कन्फर्मेशन मेल दिखा सकती हूँ। सॉरी मैम, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा डेटा यही बता रहा है कि फ़्लाइट आशिका सिंघानिया के नाम से ही बुक हुई है, डेट भी वही है जो आप बता रही हैं, एयरपोर्ट स्टाफ ने जवाब दिया। अच्छा, तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो अपने हाथ में टिकट लेकर घूम रही हूँ? आप चाहें तो देख सकती हैं। उस लड़की ने टिकट दिखाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ मेंबर ने टिकट तक देखने से इनकार कर दिया था।
उसने न्यू टिकट्स का प्रिंट आउट निकाला और बोली, रियली सॉरी मैम, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये आपने कैसे जनरेट किया, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे सिक्योरिटी बुलाना होगा और साथ ही पुलिस को, क्योंकि आप फेक डेटा के साथ हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। लड़की पैर पटकती रह गई, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि आशिका ने रेहान को साफ मना किया था कि वो किसी भी एयरलाइन को हैक करके उसके लिए सीट बुक नहीं करेगा, वो लीगली इंडिया जाना चाहती थी, पर मजबूरी में आशिका को ये काम खुद ही करना पड़ा। स्काई को यकीन दिलाने के लिए और उसे चकमा देने के लिए उसका ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में बैठना जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट अगले 10 मिनट में टेक ऑफ करने वाली थी और आशिका का नाम एयरपोर्ट पर अनाउंस किया जा रहा था। स्काई के साथ डिनर करने के बाद आशिका वहां पहुंची ही थी। आशिका के नाम का अनाउंसमेंट सुनकर स्काई को भी यकीन हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। स्काई ने गहरी सांस ली और आशिका के हाथ को सहला कर कहा, अपना अकाउंट नंबर क्यों नहीं दे रही हो, पैसे डलवा देता, कैश ले जाओ, जरूरत होगी, चाहो तो मेरे आदमी को भी अपनी सिक्योरिटी के साथ ले जा सकती हो, तुम्हारा पति इनकार कर देगा तो। स्काई ने आशिका को पैसे और सिक्योरिटी देने की मांग पहले ही कर दी थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। उसने स्काई की बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे लेट हो रही है मिस्टर स्काई, रही बात पैसों की तो आप चिंता मत कीजिए, मेरा पति गरीब जरूर है, लेकिन इतने पैसे कमा लेता है कि हम दो वक्त का खाना आराम से खा सकें। वो काम के चलते ही ऑस्ट्रेलिया गया है, मुझे पूरा यकीन है कि वो तलाक के लिए मान जाएगा, वैसे भी वो मुझे बोझ समझता है। आशिका ने उसे आश्वासन दिया और फिर फ्लाइट में जाकर बैठ गई थी। आशिका ने यही सोचा था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां से इंडिया की फ्लाइट ले लेगी और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वहीं आशिका के फ्लाइट में बैठते ही स्काई ने अपना मोबाइल कान से लगाया और बोला, वो फ्लाइट में बैठ गई है, मैं तुम्हें उसकी फोटो और फ्लाइट नंबर भेज दूंगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उस पर नजर रखना शुरू कर देना, अगर गलती से भी उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसे पकड़कर सीधे मेरे पास ले आना। आशिका अपनी तरफ से बेफिक्र होकर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकल गई थी। तो वहीं अगली सुबह अभिमान हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, डाइनिंग टेबल पर काफी सारी आवाजें आ रही थी। वहां काफी लोग बातें कर रहे थे और उनके बर्ताव से वो खुश लग रहे थे। अभिमान जानता था कि राजवंश फैमिली की खुशी का मतलब उसके लिए मुसीबत था। उसने अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ाए। जैसे ही उसने सामने की टेबल की तरफ देखा, उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। आशिका सिंघानिया, अभिमान दांत पीसते हुए मन ही मन बोला।